ओम शांति। मन बदलेंगे, चिंतन बदलेगा, मन जीतेंगे, जगत जीत बन जाएंगे। आइए इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी, हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 16 साल की उम्र में 1961 में आपने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। 1967 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करके आपने 28 साल ओएनजीसी में सर्विस की। 1996 में स्वेच्छा निवृत्ति लेकर आप मधुबन महायज्ञ में समर्पित हुए। आपको भारत सरकार ने 1992 में पर्यावरण श्री अवार्ड से नवाजा है। 2004 में आपको ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। अनेक अभियान, रैलीज एवं कार्यशालाओं का आपने सकुशल आयोजन किया है। अनेक किताबें तथा प्रदर्शनियों का आपने निर्माण किया है। देश विदेश की अनेक आत्माओं की निस्वार्थ सेवा आप बड़ी निर्माणता से करते रहते। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने भाग लिया है। वर्तमान समय आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी मेंबर है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है एवं विंग की क्वार्टरली पत्रिका के आप संपादक है। ज्ञान सरोवर स्थित एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड परिसर के आप कोऑर्डिनेटर भी है। अनेक बार यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों का आपने ईश्वरी सेवार्थ भ्रमण भी किया है। आइए हम क्लास सुनेंगे, मन जीते जगत जीत, आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी।
ओम शांति। जीवन में जब भी जीत शब्द सुनते हैं, विजय जीत, तो बहुत खुशी होती है हर एक को, क्योंकि जीत एक ऐसा शब्द है जो बहुत पुरुषार्थ के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है। और जहां पर जीत होती है वहां खुशी, आनंद, उल्लास, उमंग सदा बढ़ता रहता है। और जब एक ऐसी जीत की बात हो जिसे संसार ने ही कह दिया, हरेक ने कह दिया कि भाई मन को जीतना तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है, मन तो बड़ा चंचल है, भागता रहता है, कोई से नहीं जीत सका। और जब ऐसी जीत की बात हम सोचते हैं, सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जीवन में बहुत खुशी हो। और जब मन जीते, मन तो अपना है लेकिन जगत जीत की बात जब करते हैं, तो मन के जीतने पर खुशी और पूरे जगत के जीतने पर कौन सी खुशी? बेहद की खुशी, अपार खुशी, बहुत खुशी होती है। इसीलिए बाप दादा ने भी पिछले कई वर्षों से हम बच्चों को ये होमवर्क दिया हुआ है, हाँ? मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी लिए शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी और लगभग सभी धर्मों में कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है, मन मना भव, धन मनाभाव या संबंध मनाभाव आदि नहीं, मन मनाभाव। तो इसलिए मन को जीतना जिसे संसार ने बहुत मुश्किल कर दिया, बाबा ने उसे बहुत सहज बना दिया। क्योंकि जो चीज अनुभव की होती है, वो अनुभव की बात जब किसी को कही जाती है तो दूसरे उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी, शास्त्रों में भी, हाँ, जब कोई जगत जीत बनना चाहता था तो क्या करता था? जब विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था तो कैसे, क्या विधि होती थी उसकी? हम सब ने पढ़ा है, मानो श्री रामचंद्र जी थे, उन्हें जो पूरा विजय विश्व पर पानी थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। अब बाबा ने भी ये अश्वमेघ यज्ञ रचा है, जिसमें हम सभी बच्चे विजय प्राप्त करते हैं। पहले जमाने में जब अश्वमेघ यज्ञ करते थे तो क्या करते थे? कोई राजा होता था, यज्ञ करता था, और यज्ञ के बाद फिर कहते हैं घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़े के गले में तख्ती होती थी कि भी जो भी इस राजा की अधीनता को स्वीकार करता है वो इस घोड़े को जाने दे, और जो अधीनता को स्वीकार नहीं करता वो उस घोड़े के पीछे पीछे सेना चलती थी, वो उस सेना से युद्ध करे और जिस राजा ने यज्ञ रचा है वो उसको हराए। वो तो ऐसे ही बाबा ने भी ये जो हमारे इस यज्ञ का क्या नाम है पूरा, हाँ जानते हैं ना सब, राजस्व अश्वमेघ यो रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। हो सकता है और भी इसमें कुछ शब्द हो, लेकिन इतना नाम तो है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। तो हम सभी बच्चे भी, हम सभी ने भी ये यज्ञ रचा हुआ है। बस ये जो है हमारा अश्वमेघ, ये घोड़ा जो है, मन को भी घोड़ा बोला जाता है, और ये चल रहा है। ये यज्ञ रचने के बाद ये घोड़ा जो चल रहा है, और इस घोड़े को ये जो घोड़ा है, इस घोड़े के पीछे बाबा की ये सेना, जो बाबा ने दिव्य गुण शक्ति ये अस्त्र दिए हुए हैं, ये चल रहे हैं। लेकिन माया की सेना भी सामने है, कई बार माया की सेना से भी सामना होता है, और हम सब को बस उस सेना को हराते हुए ये विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, जगत जीत बनना है। तो कैसे बने इसको, आज इसी विषय पर ही हम सब कुछ चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं। मन जीते जगत जीत। अभी तक हमारे इस ब्राह्मण परिवार में जो यज्ञ स्थापन हुआ, कौन संपूर्ण रीति से विजयी बना है? कौन बना है? सब सुनते हैं ना, इतने सारे बाबा मामा दादियां और सब कुछ, अनेका अनेक भाई बहने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, कई एडवांस पार्टी में भी गए हैं, शरीर छोड़ा, अभी तक एक ही हमारे सम्मुख रोल मॉडल है, ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने संपूर्ण रीति से अव्यक्त स्थिति को, फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया और अपना फर्स्ट नंबर ले दिया। तो ब्रह्मा बाबा मुरली में तो अपने अनुभव सुनाते ही हैं शुरू से, उनकी जीवन कहानी में भी लिखा हुआ है कई बातें। तो बाबा भी जब ज्ञान में आए, तो बाबा ने भी जब ये अनुभव किया कि ये मन भाग जाता है, बड़ा चंचल है, बाबा को याद करते हैं लेकिन मन ठहरता नहीं। तो बाबा ने क्या युक्ति अपनाई, क्या युक्ति अपनाई, हाँ यज्ञ में भी काफी समय तक दो डायरियां थी, हैं भी शायद अभी, तो आप सबने भी सुना, एक डायरी में तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, बाबा की लौकिक पत्नी, बेटा, बेटी, उन सबका ये सब नाम थे। व्यक्ति की बुद्धि वहां जाती है जो संबंध जहाँ होता है, तो ये जब लिख लिख के पक्का किया तो बाबा को इतना पक्का हो गया था ये कि बस हमें ये सौभाग्य मिला है बाबा के साथ काफी समय रहने का, और विशेष सौभाग्य ये मिला कि 18 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त हुए, साकार देह का त्याग किया, तो उस समय हम मधुबन में ही थे और दो दिन 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण अव्यक्त स्थिति देखने का मौका मिला, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, और हम सभी को भी कर्मातीत बनना ही है, तो उसका भी हम सब आपस में वर्णन कर, चिंतन कर, उसी कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए पुरुषार्थ की दिशा को और तय करें। तो बाबा को जब ये 1936-37 में ये अनुभव हुआ होगा, क्योंकि बाबा वैसे भी बहुत कुशल व्यापारी थे, बहुत दानवीर थे, बहुत हृदय की महानता थी उन्हें, सब कुछ लौकिक रीति से प्राप्त होते भी जब ईश्वर चिंतन में लगे बाबा, ये ज्ञान मिला, साक्षात्कार हुए, उसके बाद बाबा ने भी यह जब अनुभव किया कि मन तो भाग जाता है, तो पहला तो ये बाबा ने अपने को पक्का किया मैं आत्मा हूं, और उसका प्रमाण किया, हम कोई भी चीज अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं तो कोई प्रमाण होता है ना, तो बस बाबा का तो ये था, जब हम सब लोग मिलते थे बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे ही हाथ, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, प्यारे बच्चे आओ, और बाबा के नैनों में और ऑरा के अंदर और इतने शरीर में ऐसी वाइब्रेशन थी, चुंबकीय शक्ति थी कि हम लोग बस खिंच के एकदम बाबा की बाह में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने खुद ये पक्का कर लिया था कि मैं आत्मा हूँ, जिसको भी बाबा देखता था बस वो आत्मिक दृष्टि में स्थित हो जाता था, और जैसे हम बाबा की बाह में आते थे तुरंत देह का भान भूल जाते थे और आत्मिक स्वरूप में एकदम स्थित हो जाते थे। तो एक तो मन जीते जगत जीत के लिए ये आवश्यक है, अपने को न केवल सुनने तक ही सीमित रखे, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, गुणों में नहीं, बल्कि ऐसे हमारे अंदर आत्मिक स्थिति की अनुभूति परमानेंट हो, जो जिसको भी हम दृष्टि से देखें वो आत्मिक रूप में स्थित हो जाए। और फिर जब हम बाबा के बाह में आते थे बस थोड़े समय के लिए बिल्कुल देहभान भूल जाते थे, फिर बाबा जैसे ऐसे थपथपा के, आओ बच्चे आओ आओ, फिर बाबा जैसे कि देह में ना हम बच्चों को बुला करके, फिर बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, फिर सब पूछ के फिर एक जाता था, दूसरा आता था, जितने पार्टी में मेंबर होते थे वन बाय वन एक के बाद एक मिला करते थे। तो एक ये हम अपने को चेक करते चले, क्या मैंने भी इतनी आत्मिक स्थिति को ऐसा प्राप्त करने का किया है, या पुरुषार्थ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कि जिधर भी मेरी दृष्टि जाती है जिस आत्मा की तरफ वो देह भान तुरंत भूल जाता है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसी अनुभूति हर समय जो अब कई बार दादियों के सम्मुख होती है, बाबा के साथ तो हमें बहुत रहने का 6-7 साल मौका मिला, तो ये अनुभूति एक तो समय प्रति समय बहुत करते रहे। दूसरी बात, जब बाबा ने ये अनुभव किया कि शुरू में ही शायद ये अनुभव किया होगा कि ध्यान लगाते हैं योग तो मन भाग जाता है। तो बाबा ने क्या युक्ति अपनाई, बाबा ने मन को पत्र लिखा, लेटर लिखा। उस लेटर की कॉपी हम सब पुराने भाइयों को दी गई थी। तो बड़ा अच्छा, गौर से सुनिएगा बाबा ने क्या लिखा मन को पत्र। बाबा ने लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और तू बहुत शक्तिशाली हो गया। और तू जिधर जिधर कहता रहा मैं आत्मा राजा, कमजोर होकर तेरे पीछे पीछे चलता रहा, भागता रहा। तू जिधर जिधर मुझे ले जाता रहा मैं तुझे फॉलो करता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, और अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि तू मंत्री है, मैं राजा हूं, और तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। बाबा ने ऑर्डर दिया मन को, और उसके बाद से फिर बाबा ने कभी ये महसूस नहीं किया कि मन आत्मा की इच्छा के विरुद्ध कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है। तो बाबा ने मन को ऐसे पत्र लिखा, और इसी बात को ही बाबा कई वर्षों से, आप पिछले कई वर्षों की अव्यक्त मुरली देखेंगे तो सब सुना होगा आपने, बाबा हमेशा कहता है, क्या कहते हैं, रोज अपनी इन सूक्ष्म शक्तियों की दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार, देखो इन्होंने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी मुझ आत्मा की आज्ञा का, मन अपने आप तो नहीं भाग गया, इनकी रोज दरबार लगाओ। तो ये हमें भी देखना है कि मैं मन की कितनी दरबार लगाता हूँ और मन मेरे इच्छा पर चलता है। बाबा का तो बस जब एक बार बाबा ने इसे करा, और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ हो गई और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमजोर बना दिया, लेकिन अब हे बुद्धि मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो इस तरह बाबा ने मन बुद्धि को पत्र लिख करके ये एश्योर किया, पक्का किया कि ये दोनों मेरे साथ साथ, मेरे अंडर में, मुझ आत्मा के वश में हैं। अब चाहते तो हम सब भी हैं कि मन हमारे वश में रहे, लेकिन फिर भी मन भाग जाता है, इसके लिए क्या करें। बहुत बाबा ने सहज उसकी भी युक्ति बताई है कि जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, तो जब वो अपनी सीट पर होता है, पावर में होता है, तो सब उसकी आज्ञा मानते हैं, लेकिन अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है या वो इलेक्शन हार जाता है या रिटायर हो जाता है या पावर में नहीं रहता, सीट पर नहीं रहता, तो फिर उसकी आज्ञा कोई नहीं मानता। ऐसे ही पहले हम देखें कि मैं आत्मा राजा अपने स्वमान में स्थित होकर के किसी शक्ति को ऑर्डर कर रहा हूँ। मानो मेरे कुछ व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं और बस मैं चाहता हूँ ये मेरे व्यर्थ संकल्प रुकें। कोई ना कोई परिवार में परिस्थिति आती है, व्यवसाय में आती है, संबंधों में आती है, कई बार व्यर्थ संकल्प बहुत चल जाते हैं, जो बाबा ने कहा भी है कि ये दो खजाने हर बच्चे को बहुत सावधानी से बचत इनकी करनी है, देखना है कौन से दो खजाने हैं, समय और संकल्प रूपी खजाना। तो अक्सर हमारा संकल्प रूपी खजाना कई बार वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं कोई परिस्थिति के कारण, हम चाहते हैं लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पहले स्वमान की सीट पर स्थित नहीं हुए और तब हम ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे अंडर में ही जो चीज नहीं है हम उसे ऑर्डर करेंगे तो वो हमारी बात माने या ना माने। तो इसीलिए बाबा ने कहा पहले स्वमान में स्थित हो, जो बाबा ने इतने महान स्वमान हम बच्चों को दिए हुए हैं, बच्चे सदा ये रखो मैं विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं आत्मा वही कल्प पहले वाली हूँ जिसे बाबा ने विजय माला का मणका बनाया था, मैं अभी भी बन रही हूँ, बाबा आप तो वही हो ना, बाबा हम आत्माओं को आप कितना ऊंच बना रहे हो, और स्वमान में इतने जो स्वमान दिए उनमें, उन स्वमान में पहले अपने को कुछ मिनट स्थित करें और उसके बाद फिर हम शक्ति को ऑर्डर दें। मानो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, हे समेटने की शक्ति आओ, हे समेटने की शक्ति, और फिर आप देखोगे कि किस तरीके से समेटने की, पुराने जमाने में होता था ना, पहले तो राजा लोग या किसी को बुलाते थे तो क्या करते थे, हा? बस देखने में आता ऐसे ताली बजाते थे एक दो, और जो दासियां होते थे दास वो आते थे राजा के सम्मुख आदाब करते हुए हुक्म, फिर राजा हुक्म करता था और फिर वो जाते थे और वो हुक्म की तालीम होती थी। तो इस रीति से पहले हम अपने को स्वमान की सीट पर थोड़ा स्थित करें, महानता की सीट पर, और उसके बाद हम उस शक्ति को ऑर्डर करेंगे, बहुत बार का हमारा तो अनुभव किया हुआ है, तुरंत ही वो शक्ति आ जाती है और हमें उस समय जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं उसमें से एकदम निकाल लेती है। और इसके लिए बाबा ने ये भी बताया है, कई बार बाबा ने कहा है कि मैं तो बच्चों की सेवा में उपस्थित रहता हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन बच्चे मुझे यूज करना नहीं जानते। बच्चे अगर मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। आह्वान करें, बाबा बाबा आओ आओ बाबा, मुझे इस परिस्थिति से निकालो बाबा। बाबा ने कितनी बार बोला है और आप इसको ट्राई करके देखिए, उस एक संकल्प को बार 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 रिपीट करके आप देखो, बाबा के बच्चों को विजय दिलाने की विधि ही निराली है। वो उस मेथड से चाहे नहीं होगा जो मेथड से हम चाहते हो, लेकिन हमारी विजय निश्चित है 100%, ये पक्का है। किसी न किसी रीति से बाबा किसी व्यक्ति को निमित्त बना के परिस्थितियों को बदल करके, महाभारत में भी तो हमने देखा है, जब परिस्थिति ऐसे अर्जुन की हार की हो गई थी, अर्जुन ने व्रत लिया हुआ था कि मैं शाम तक जयद्रथ को मार दूंगा, सूर्यास्त से पहले नहीं हो रहा था, तो भगवान ने क्या विधि करी, परिस्थितियां बदल दी, सूर्य को टेम्परेरी छिपा दी। ऐसे ही बाबा परिस्थिति को ऐसे बदल देते हैं जो हमारे अनुकूल हो जाती है और हमें विजय मिल जाती है। ऐसे तो ये जब हमारे पास इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इतना भगवान है, केवल भक्ति मार्ग की तरह कहने के लिए नहीं कि हे प्रभु आओ रक्षा करो, नहीं, उसको यूज करके देखें, आप देखेंगे एक बार भी ये ब्रह्मास्त्र फेल नहीं जाता है। बस सफलता जो हम कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें मिलती जाती है। तो इसलिए एक ये हम देखते चलें कि मैं अपने मन को कितना अपने वशीभूत करता जा रहा हूँ। और बाबा ने यह कहा, स्वमान में पहले स्थित हो और स्वमान में स्थित होके फिर आप ऑर्डर करो, हो ही नहीं सकता कि आपकी हार हो। इसीलिए बाबा की दो डायरियां उसमें थे। साथ ही बाबा ने और कहा, क्या कहा है, बच्चों के सामने पेपर तो अनेक आएंगे, बाबा ने बताए हुए हैं अनेक अनेक पेपर, आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, आज भी मुरली में था ना, ऐसी परिस्थिति आएगी, अन्न खाने को नहीं मिलेगा, नहीं होगा, पानी होगा, पीने जैसा नहीं होगा, एक तो ये आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर होगा। दूसरा बाबा ने बताया हुआ है बच्चों के पुराने स्वभाव संस्कार का पेपर, पुराने संस्कारों के पेपर। बाबा ने ये बताया है कि ऐसे पेपर जो अशुद्ध आत्माओं का पेपर, ऐसी परिस्थिति आने जब अकाल मृत्यु और समूह मृत्यु बहुत होगी। बाबा ने आज भी बोला ना, बम कोई रखने के लिए तो बने नहीं है, यूटिलाइज होंगे ही होंगे। तो इसीलिए जब प्राकृतिक पांच प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर, ये सब पेपर जब आएंगे तो क्या होगा, अकाल मृत्यु होगी, समूह मृत्यु होगी, और ये काफी संभव है कि जो आत्माएं बहुत बहुत अतृप्त इच्छाओं को लेके जाते हैं, काफी समय तक वो भटकती रहे, उन्हें शरीर माता के गर्भ में तैयार न मिले, फिर वो आत्माएं क्या करती हैं, किसी न किसी शरीर का आधार लेकर उससे अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो इसलिए जब ये सारे पेपर आने हैं तो इन सब पेपरों के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना है, तैयारी नहीं बल्कि उन पर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए बाबा ने अनेक विधियां बताई हैं इन सब के लिए, लेकिन अभी बाबा ने जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बताए हैं कि दो विशेष पेपर वर्तमान समय सभी बच्चों के सम्मुख आने हैं, वो है, एक है शरीर का पेपर, शरीर का कोई पुरानी व्याधि है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। यंग लोग जवान ये ना सोचें कि हमारे सामने तो नहीं आएगा, ये तो बुजुर्गों के और वृद्धों के सामने ही आएगा, नहीं, भले शरीर हमारा अभी वृद्ध न हो, लेकिन आत्मा तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते अनेक विकर्मों का बोझ संचय कर बैठी है ना। इस कारण से जो भी हिसाब किताब चुकतू तो इसी शरीर से होने हैं। इस कारण से एक तो शरीर का पेपर और दूसरा पेपर एक ब्राह्मण परिवार का पेपर, और इसी में समय और संकल्प दोनों ये खजाने वेस्ट जाते हैं। आप देखोगे शरीर का पेपर आया, बीमारी हो रही है, तकलीफ है, दर्द हो रहा है, बहुत बहुत, ऐसे में बड़ा समय भी वेस्ट जाता है और संकल्प भी बहुत वेस्ट जाते हैं। बाबा ने कैसे पार किया? बाबा को हम देखते थे, बाबा की इतनी उम्र 93 इयर्स एज थी, 93 साल है। कितनी कई बार बाबा को खांसी आती थी बस, और खांसी आके कितनी बार तकलीफ होती थी, आंख भी जैसे लगता था जैसे गीली जैसी हो रही है, हमें लगता था बाबा को जैसे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा की स्वस्थिति इतनी मजबूत जो परिस्थिति को तुरंत ही बदल देती थी। स्वस्थिति बाबा की, बाबा के ऊपर आपने हिस्ट्री हॉल में देखा होगा क्लासरूम, बाबा के पास में श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का और लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर था। तो बस जब ऐसी तकलीफ कई बार होती, बाबा कहते अरे बच्चे देखो अभी तो ये पुराना शरीर है ना, पुराना शरीर इसलिए इसमें तकलीफ है, व्याधि आ रही है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, वहां तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कितना आनंद होगा, खुशी होगी। और बाबा के चेहरे पर वो खुशी एकदम ऐसा देखने में आती थी, प्रदर्शित होती थी कि देखने वाले भी सब हम बच्चे भी खुशी की लहर में हो जाते थे। भले बाबा को कुछ सेकंड पहले इतनी खांसी इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन बाबा की अपनी स्थिति इतनी मजबूत कि उस परिस्थिति को बदल करके फिर बाबा कहता था बच्चों को भी बस ऐसी खुशी में रहना चाहिए, कभी भी कोई दुख आए गम आए बस उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे ऐसी खुशी हो जो गम को खा जाए, ऐसी खुशी हो बस कैसी, बाबा कहता कापारी खुशी। और खुशी में क्या करना चाहिए बच्चों को? बाबा कहता था खग्गियां मारनी चाहिए। देखा होगा ना बाबा ने करके दिखाया, वो बच्चे कल ऐसा बाबा बनेगा, वो ऐसा करके बाबा यूं खग्गियां ये दिखाते थे, और बस बाबा का चेहरे पर भी वही खुशी, और लगता ही नहीं था कि कुछ सेकंड पहले जैसे बाबा को ये तकलीफ हो रही थी। बाबा हम बच्चों से भी यही चाहता है कि हम लोग भी बस दुख का, क्योंकि सतयुग में तो दुख होगा नहीं, यहां अगर अभी भी हम कोई कारण से दुखी हुए तो वो सतयुग में संस्कार लेकर तो जाने नहीं है, इस कारण से सुख के खुशी के संस्कार लेके जाने हैं। एक बाबा का ये प्रत्यक्ष होता था। और कैसे बाबा ने इसकी प्रैक्टिस करी, हम लोग देखते थे जब बाबा से पार्टी मिलने आती थी ना, तो शरीर का पेपर जैसा भी हो जाए, अब पार्टी को जैसे टाइम दिया होता था 10 बजे भाई दिल्ली पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई पार्टी, 11 बजे नेपाल पार्टी, और 11:30 बजे कलकत्ता पार्टी, आदि आदि हर पार्टी का टाइम दिया हुआ होता था, जैसे अभी भी दादियों से मिलने के लिए टाइम होता है। ब्राह्मणी जब जाती थी, बाबा 3-4 जगह में कहीं मिलते थे, या तो बाबा झोपड़ी में मिलते थे ऊपर, या बाबा क्लासरूम में मिलते थे, पार्टी बड़ी होती थी तो क्लासरूम में, अब मीडियम पार्टी 4-6 लोग होते थे तो झोपड़ी में, और अगर एक दो ही होते तो कई बार बाबा अपने कमरे में भी मिल लेते थे। तो बस टीचर जाती थी, बस देखती थी बाबा एकदम आंख खुला हुआ है, अपने में एकदम मस्त है, बिल्कुल बाबा कोई ध्यान में नहीं है, आंख बंद नहीं है, लेकिन टीचर जाके भी खड़ी हो जाती थी तो भी कई बार बाबा का ध्यान नहीं होता था, इतना बाबा जैसे शरीर यहाँ होता था, और बुद्धि से बाबा, जो बाबा ने अनेक स्थान कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी नई दुनिया, कभी दुनिया को साकाश देने का सब काम में जैसे बाबा बुद्धि से भी व्यस्त रहता था, तो टीचर जाके जब देखती थी बाबा का ध्यान कहीं और, बोलती थी बाबा बाबा मैं फलानी पार्टी लेके आई हूँ, तो बाबा का एकदम थोड़ा कई बार जर्क सा लगता था, अच्छा अच्छा बच्ची पार्टी लेके आई हो, आओ पार्टी को ले आओ, टीचर फिर पार्टी बुलाती थी, बाबा फिर जैसे बैठ के एक एक बच्चे से मिलते थे, टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, गोदी में लेते थे, एक जाता था दूसरा आता था, इस तरह पार्टी वन बाई वन मिलती थी। फिर जब पार्टी पूरी होती थी फिर टीचर ले जाती थी पार्टी को, फिर बाबा फिर शरीर से न्यारा। तो देह में आने का अभ्यास और देह से न्यारा होने का अभ्यास, ये बाबा को इतना परफेक्ट हो गया था। इसी कारण से कई बार बाबा का जो हम लोगों ने सुना है कि ऑपरेशन वगैरह भी होता था, बाबा एकदम इतना कई बार तकलीफ, डॉक्टर भी आता था कहता था, और यहाँ तो हमने बड़ी दादी का तो बहुत बार देखा है, प्रकाशमणि दादी जी का जाते थे, कई बार पूछते थे दादी आपको तो इसमें बड़ा तकलीफ हो रही होगी, डॉक्टर पूछता था कि नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। नहीं दादी आप बोल रही हो, नहीं नहीं मुझे तो जरा भी नहीं, क्योंकि बस मुझे जब भी कोई थोड़ा भी तकलीफ होती है मैं अपने को शरीर से डिटैच कर लेती हूँ। तो ये अभ्यास शरीर की बीमारियों पर, कोई भी शरीर का पेपर आएगा उसके लिए बहुत जरूरी है। देह में आना, जब पार्ट बजाया आकर के, फिर देह से एकदम न्यारे हो गए। बाबा को ये पार्ट इतना पक्का हो गया था कि बस जब चाहे बाबा देह से न्यारा हो जाता था। न्यारे का मतलब कोई आत्मा निकल के नहीं जाती है, लेकिन जैसे अपने को ना शरीर से जब डिटैच कर लेने का, विदेही स्थिति का जो आज भी मुरली में था, वो अभ्यास हो जाता है, फिर देह की कोई भी चीज ना वो तकलीफ नहीं देगी। स्थूल में भी अभी भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, कोई एनेस्थीसिया देते हैं या सुन्न कर देते हैं किसी पार्ट को, उधर काटेंगे भी, खून भी निकलेगा, तो भी शरीर को कुछ अनुभव नहीं होता। तो जब विज्ञान में इतनी शक्ति है तो आत्मा तो विज्ञान की भी निर्माता है, विज्ञान हमारी रचना है, हम रचयिता है, तो इस कारण से हमारे में तो हमारी रचना से ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। तो जब चाहे हम डिटैच कर लें, उसके बाद शरीर में कुछ भी हो पता ही नहीं रहता। एक ये अभ्यास शरीर का पेपर जीतने के लिए, और दूसरा परिवार का पेपर, उसे जीतने के लिए, क्योंकि मन के संकल्प इन्हीं जगह ज्यादा भागते हैं और मन जीते जगत जीत बनने में रुकावट डालते हैं। जब हम किसी परिवार वाले की कोई बात देखते हैं ना, अपने दैवी परिवार की, पुराने भाई बहनों की भी, तो मन में आता है अरे मैं तो अभी 10 साल पुरानी हूँ, पुराना हूँ 15 साल, ये तो 40 साल पुराने भाई, इनके अंदर भी ऐसी बात, ये कमी, इनके अंदर भी क्रोध। तो बस जब उनमें हम कोई भी कमी देखते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल शिकस्त होने लगता है, छोटा होने लगता है। हालांकि बाबा की मुरली कुछ संडे की, कुछ दिन पहले की चली थी ना, महारथी जो है उनको तो बाबा, उन्होंने तो इतनी शक्ति इकट्ठी की है और वो समय पर पार हो जाएंगे उससे, लेकिन जो ये कमी देखेंगे वो समय पर पार नहीं हो सकेंगे। भले बाबा टाइम टू टाइम बताता रहता है, लेकिन ये पेपर हम बच्चों के सामने आता है जब किसी भी बहुत पुराना या कोई ऐसी बात देखते हैं, इसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है, बड़ी सहज विधि। बाबा ने कहा एक तो कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, वर्तमान काल की नहीं, तीनों कालों की दृष्टि से देखो। यानी कि अगर कोई आत्मा में वर्तमान समय कमजोरी का पार्ट चल रहा है, लेकिन हम उसके भाई बाबा ने उसकी विधि बताई है बहुत अच्छी है, कि मेरा एक एक बच्चा जो है वो इस समय दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी महान है। क्यों? क्योंकि उसे मैंने चुना है, भगवान ने चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान के हम चुने हुए बच्चे हैं, और अभी अगर किसी में कोई कमजोरी का पार्ट भी दिख रहा है तो भी किसी न किसी समय उसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, इसीलिए हम उसको वर्तमान की दृष्टि से न देखें। तीनों कालों की ये वही आत्मा है जो 5000 साल पहले डबल ताजधारी थी, पवित्र थी, देवी देवता थी, अभी इसका ये पार्ट भले चल रहा है, फिर से ये आत्मा फरिश्ता स्वरूप बन करके उसी स्थिति को प्राप्त करने वाली है। तो तीनों कालों की दृष्टि से अगर एक तो किसी को देखेंगे, कभी भी किसी आत्मा के कोई पार्ट पर हमारा प्रश्न पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की चुनी है और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। और दूसरी बात, लौकिक में भी अगर कोई फिल्म होती है, ड्रामा होता है, तो कोई सबके पार्ट एक जैसे तो होते नहीं। फिल्म में कोई हीरो हीरोइन होंगे, कोई कॉमेडियन होंगे, कोई विलेन होगा जो गलत नेगेटिव पार्ट बजाएगा, आदि आदि। तो सबके पार्ट अपने अपने, सभी तो ये ड्रामा वैरायटी है। और बाबा ने कहा है ये सृष्टि रूपी ड्रामा भगवान को अति प्रिय है, इससे बढ़िया ड्रामा नहीं बन सकता था। भगवान को अति प्रिय, तो जो चीज बाबा को अति प्रिय है वो हमें प्रिय न हो, उससे उसमें हमारा नुकसान है या लाभ है? इसीलिए ये ड्रामा जो बना हुआ है, इससे बढ़िया ड्रामा कोई नहीं बन सकता था जो बाबा ने बताया। इसलिए इसके अंदर हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए हम सदा उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखें, और उसे देखें कि ये आत्मा भी जिसमें आज कमजोरी का पार्ट दिख रहा है, ये भी आत्मा भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान ने सेलेक्ट किया है, और इसका कभी भी पार्ट जो है गलत नहीं हो सकता। अंत में इसके द्वारा किसी न किसी रीति से, मुझे याद आता है एक बार अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, तो एक जोन की बहुत पुरानी बहन थी, बहुत समय तक बहुत सेवा करी, फिर बाबा तो कहता है माया सब पे आती है, बस माया के वशीभूत होके वो चले गए। तो जो जोन इंचार्ज थी वो बाबा को वो बात बता रही थी उस समय, काफी साल पहले, 25-30 साल पहले की बात है, कि बाबा फलानी फलानी ऐसा ऐसा हुआ। और वो तो बाबा ने सुना, फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा आज भी उसकी सेवा के आगे नतमस्तक होता है, और बाबा ऐसे दृष्टि देते देते बाबा का ना सिर भी ऐसे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि उसने बहुत बहुत सेवा की, और जो भाग्य उसने जमा कर लिया वो भाग्य तो कहीं गया नहीं, वो तो जमा हो ही गया। अब वो किसी भी कारणवश अगर चली गई है, अब आप सब लोग शुभ भावना शुभ कामना का दान दो, और साथ ही साथ वो आत्मा को प्रति बाबा अभी भी आभारी है, क्योंकि उसने बाबा की इतनी सेवा की है। बाबा केवल वर्तमान नहीं देख रहा कि वो चली गई, बाबा उसके तीनों कालों को देख रहा है, पास्ट में जो सेवा करी है उसको देख रहा है विशेष। तो देखो, भगवान भी जो तीनों कालों का दाता ज्ञाता है, वो भी किसी आत्मा का एक काल नहीं देखता, तीनों कालों से फिर उसे एवोल्यूएट करता है। तो कभी भी किसी भी आत्मा को देख के हम उसके बारे में ऐसा निष्कर्ष न बना लें कि ये आत्मा उसके द्वारा ये पार्ट क्यों चल रहा है। और जब मन जीते जगत जीत की बात आती है, जगत के अंदर तो क्या आता है, मनुष्य तो आ ही गए, लेकिन जगत के अंदर विशेष करके प्रकृति भी आती है। मन जीते का लक्षण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब बाबा से ना हम लोग पहले मिलते थे 62-63 में, तो बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा हमारे हालचाल पूछते थे और क्या सेवा है, बहुत काफी समय देते थे, एक एक को 15-20 मिनट भी मिलता था हालचाल, और फिर बाबा हर एक को संतुष्ट। फिर जब बीच में लगभग 66-67 के समय 1966 है, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा को ये बात बताएंगे, एक दो लाइन बोलते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। लेकिन 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा, गौर से सुनिएगा कि किस तरह बाबा उस समय जब बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त स्थिति थी, हमें लगभग 6-7 बार बाबा से मिलने का 17 जनवरी और 18 जनवरी 1969 मौका मिला, क्योंकि बाहर की पार्टियां नहीं थी। हम सोचते थे अब बाबा से जाके ये कि कभी पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, कभी सेवा की बात पूछेंगे, कभी और उन्नति की बात पूछेंगे, ऐसे मन के अंदर कई काफी कोई प्रश्न लेके जाते थे। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा थोड़ा यूं दृष्टि दी, बस दृष्टि देते ही बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। मतलब जब मन जीते जगत जीत आत्मा संपूर्ण बन जाती है, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मन के भावों को वो पूरा समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उस समय इच्छा मात्र अविद्या बिल्कुल हो जाती है, उसके मन में अपने कोई संकल्प नहीं होते, तो दूसरे के संकल्पों को वो तुरंत ही पढ़ लेती है। तो जैसे पानी होता है ना, पानी में अगर साफ पानी होगा हम उसमें अपनी छवि देख सकते हैं स्पष्ट, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ भी डाल दो लहरें पैदा होंगी, फिर अपनी छवि स्पष्ट नहीं दिखेगी। ऐसे ही यदि हमारे अपने मन के अंदर कोई संकल्प अपने नीत नहीं होंगे, तो हम दूसरों के संकल्पों को तुरंत पढ़ के उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, उनके इष्ट देव इष्ट देवी बन करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, हमने अपने मन के संकल्पों के ऊपर अगर विजय पाई होगी। तो बाबा का ऐसा कितनी बार देखा उन दिनों में, मुझे याद है 18 जनवरी की रात्रि क्लास हिस्ट्री हॉल, लगभग समय रात के 7:30-8 बजे के अंदर, क्योंकि उस दिन बाबा ने ना देखो जल्दी ही क्लास बुलाई है। हमेशा मधुबन में क्लास का रात्रि क्लास का टाइम भोजन वगैरह करके 8:30-9 के करीब होता है, शुरू से ये समय है। लेकिन उस दिन बाबा ने एक भाई को बुला के कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सबको इन्फॉर्म कर दो। तो उसने इन्फॉर्म कर दिया और सभी हम सब लोग बस 7:30 बजे लगभग अंदर वहाँ आ गए क्लास। बाबा क्लास में आए, बस बाबा का ऐसा रूप फरिश्ता कर्मातीत अवस्था थी, लगता था जैसे कोई फरिश्ता जैसा रुई पर चलता हुआ बिल्कुल आया, और बस अंग अंग से जैसे लाइट सी बाबा की चमकती हुई। मुरली चलाने के लिए बाबा बैठे, मुरली चलाई बाबा ने। उस दिन बाबा को देखो, एक दिन पहले भी बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी का अक्सर करके कई बार ऐसा होता था, कफ वगैरह आता था, तो बाबा को कई बार गला साफ करने की कोशिश मतलब करनी पड़ती थी। लेकिन उस दिन 18 जनवरी की रात को बाबा को एक बार भी वो मुरली सुनो कैसेट्स मधुबन में मिलती हैं, सीडी मिलती हैं 18 जनवरी की रात्रि क्लास की अंतिम साकार मुरली, तो एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, खांसी नहीं आई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी ना, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, कोई भी कर्म भोग हमें परेशान नहीं करेगा शरीर का। क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। तो उस दिन बाबा ने मुरली चलाई, हम भी सामने बैठे हुए थे। अब जानते हैं अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो क्या होती है, सबकी इच्छा हो क्या ही अच्छा हो अगर स्टेज पर जाने का हमें मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए। ये हमें भी जस्ट बहुत एकदम तो नए नहीं थे पुराने, लेकिन फिर भी बाबा की तो पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग मैग्नेटिक थी, चलो बाबा कोई भी ना हमारे मन में संकल्प आया, संकल्प ही सिर्फ बाबा कुछ हमारी उन्नति के लिए कोई महावाक्य उच्चारे कोई और, देखो सिर्फ संकल्प हुआ बाबा तक पहुंचा, क्योंकि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, और तुरंत ही बाबा ने बस कुछ सेकंड में ही कई महावाक्य उच्चार दिए नाम लेकर के, जो जीवन भर के लिए हमारे लिए गाइडिंग स्टार बन गए जीवन भर के लिए। बात क्या है कि अभी हम बच्चे भी दुनिया की बहुत आत्माओं के इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं, तो हम लोगों को भी जो भक्त आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी अनेक इच्छाएं लेकर के आएंगी, और अगर हमने अपना मन जीते जगत जीत, मन को जीता हुआ होगा, इच्छा मात्रम अविद्या बने हुए होंगे, तो भक्त आत्माएं आएंगी, उनके मन में कोई भी संकल्प होगा, हमेशा ये होता है भक्ति मार्ग में भी, भक्त के मन में संकल्प होता है, इष्ट देव जो होता है उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कौन सा? तथास्तु। बस जो भी तुम्हारा जो है संकल्प वो पूरा हो, फिर भगवान इष्ट देव अंतर ध्यान हो जाते हैं, भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है। जितने भक्ति मार्ग के गायन हैं वो सब यहीं के हैं, तो उस दिन ये प्रत्यक्ष अनुभव किया, संकल्प आया, बाबा ने जैसे बोला, उसके बाद मुरली पूरी हुई, मुरली पूरी होके बाबा खड़े हुए, चले हिस्ट्री हॉल के बाहर एक दो कदम चले, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा एक एक को दृष्टि देने लगे, बार बार बाबा की दृष्टि रुक के दादी प्रकाशमणि जी की तरफ आ जाती थी, दादी सबसे आगे ही बैठे हुए थे, फिर बाबा दृष्टि देके सबको, फिर बाबा एक दो कदम चले, फिर रुक गए, फिर रुक करके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि दी। तो जैसे उस दिन शिव बाबा को तो मालूम था ना, ये आज मेरा अंतिम में साकार मिलन इस ब्रह्मा के द्वारा बच्चों से हो रहा है, तो जैसे लगता था बाबा की बस बाहर एक दो कदम जाते फिर बाबा रुक जाते थे, ये इच्छा होती नहीं थी कि मैं जैसे कि जाऊं क्लास पूरी करके। बाबा क्लास के बाहर गए, बाबा ने फिर सबको बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, पहले बाबा ने कभी नहीं बोला था ये शब्द, उसी दिन ही बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कहते ये इस बात का प्रतीक है जो भक्ति मार्ग में गायन है, इच्छा मृत्यु का, भीष्म पितामह का जो गायन है ना, बस इच्छा मृत्यु। हम सब बच्चों को भी इच्छा मृत्यु के वरदान से अपने को परिपूर्ण करना है, जब शरीर छोड़े, क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ हो ही रहा है, उस एक घड़ी के लिए जब हमारा आत्मा इस शरीर से निकलेगी, और गायन है अंत मते सोगति का गायन, तो इसीलिए बाबा बस जैसे हिस्ट्री हॉल के बाहर दरवाजे पे, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कहते हुए जैसे बाबा को मालूम था बस ये साकार अंतिम मिलन हो गया, अब बच्चों से छुट्टी लेना, बस सबने सुना ही है, दादी जी के हाथ में हाथ, और फिर बाबा ने जैसे विदाई ली। तो ये हम बच्चों को भी, क्योंकि अंत समय में भारत में तो विशेष करके क्या होना है, पांच तत्वों का बहुत बहुत भयंकर खेल होना है। बाबा अभी तो बोलते हैं, अभी तो एक तत्व या दो तत्व जब हलचल दिखाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन जब अंत में पांचों तत्व मिल करके, जल एक तरफ, अग्नि, वायु, आकाश मार्ग से भी सब ऐसी आपदाएं आएंगी, तो क्या होगा, उसके लिए हमें अपने को तैयार रखना है कि बाबा जब मेरा ये शरीर छूटे, मैं अपनी इच्छा से शरीर छूटू, ऐसा नहीं कि कोई छत गिर गई, ऊपर से बम आ गया, या फ्लड आ गया, पानी में बह गए, ऐसी परिस्थिति में अगर हमने शरीर छोड़ा, चारों तरफ विपरीत परिस्थिति हुई तो फिर क्या होगा, अंतमते सोगते, पता नहीं ऐसे वक्त जब चारों तरफ हाहाकार होगी, दुख अशांति हल्ला, ऐसे में हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो उससे पहले ही बाबा ने ये कहा है, और हमने कई बार ये अनुभव किया है, हमारे भाई बहनों ने इतनी लाटूर का, चाहे अर्थक्वेक आया, चाहे कच्छ भुज का आया, चाहे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, चाहे सुनामी आई, कितनी जगह ये अनुभव सब भाई बहनों ने किया है कि जब कोई भी आपदा आती है, बस अगर हमारा बुद्धि योग बाबा से ठीक होता है तो समय पर बाबा जो टच करता है, हमारे कदम ऑटोमेटिकली वहां बढ़ते हैं जहां पर सेफ्टी होती है, ऑटोमेटिकली जहां पर सेफ्टी है वहीं कदम बढ़ेंगे। इसीलिए अभी वायरलेस बाबा कहता है वो भी अंत में काम करे ना करे, लेकिन काम क्या होना है, वॉइसलेस, जितनी निर्विकारी बुद्धि होगी ऑटोमेटिकली बाबा की टचिंग आएगी, ऑटोमेटिकली हम उधर बढ़ेंगे जहां कोई आपदा के वशीभूत होकर हम प्राण त्याग नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी इच्छा से जाते हैं। ये बाबा ने सफलता का राज हम बच्चों को बताया है। और बाबा ने उस दिन बाबा ने ना जब शरीर छोड़ा उसके बाद तो कमाल देखने को मिली। क्या? बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि को शरीर छोड़ा। बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन रखा रहा, 19 की रात रखा रहा, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कमाल, हम तो वहीं थे, हमने देखा न बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन कोई ऐसी चीज लगाई गई थी, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसे ही चमकता हुआ, गोरा का गोरा, न कोई काला हुआ, न दुर्गंध पड़ी। और जब बाबा को स्नान कराया 21 तारीख को दोपहर के समय, तो देखा बाबा का शरीर में ऐसे ही काफी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई थी। नहीं तो होता क्या है, जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, आत्मा चली गई। लेकिन बाबा ने इतना प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, 5 तत्वों के ऊपर प्रकृति जीत बाबा बन गया था, कि शरीर छोड़ने के 65-70 घंटे बाद भी बाबा का शरीर ऐसा ही रहा, बिल्कुल मुलायम कोमल की तरह, गोरा रंग, कोई दुर्गंध नहीं, कि कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, जो बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है। हम बच्चों को भी बाबा कहता है प्रकृति को रोज योगदान करो, प्रकृति जीत बनो। ये 5 तत्व, इनके ऊपर, क्योंकि 5 तत्वों से ही तो बना हुआ हमारा शरीर है, यही शरीर जो है 5 तत्व ही आदि से लेकर अंत तक के हमारे साथी है। भले अलग अलग नाम रूप में होंगे, लेकिन होंगे तो यही 5 तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। तो हम प्रकृति जीत और कैसे बने, ये तो है कि हम प्रकृति को रोज योगदान करें, प्रकृति के साथ वार्तालाप करें। लेकिन और सहज एक विधि जो बाबा ने बताई है, बिल्कुल सहज, प्रकृति को हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें। उससे क्या होगा कि मित्र जो है हमेशा मित्र की सदा मुश्किल में रक्षा करता है, कभी उसके प्राण नहीं लेता। तो इसीलिए इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, जिससे ये अंत तक हमारे साथ ही रहे। मान लीजिए जल तत्व है, हा? जल तत्व का कौन सा विशेष गुण है? शीतलता, ये भी है। लेकिन जल का एक विशेष गुण ये भी है कि जल को जिस चीज में लो उसका रूप धारण कर लेता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में भी सेट हो जाएगा, एडजस्टमेंट का। ऐसे हम आत्मा ने भी अगर ये एडजस्टमेंट का गुण धारण किया होगा, हर आत्मा के संस्कार के साथ हम संस्कार मिला के चल सके, हर आत्मा के साथ एडजस्ट हो सके। ये नहीं कि जो मेरे साथ अच्छा है उसके साथ तो हम एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ विपरीत है, जिससे हमारे संस्कार पूरे नहीं मिलते हैं, उससे हम एडजस्ट ना हो सके। नहीं, अच्छे के साथ अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मुख्य बहुत विपरीत भी है उसके साथ भी हम एडजस्ट होके चले। इसका मतलब जल जैसा गुण हमने धारण कर लिया, फिर ये जल कभी भी हमारी मृत्यु का, दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। चाहे जितनी सुनामी आए, जितने फ्लड आए, बाढ़ आए, तूफान आए, लेकिन हमें बुद्धि को ऐसा टचिंग होगी कि सही समय पर हम सही रास्ते पर निकल जाएंगे और वो हमारी मृत्यु का, दुख का कारण ये तत्व कभी नहीं बन सकता। जल के ऐसे बहुत गुण हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक एक गुण ही बताना चाहता हूँ। ये जल का गुण है, एडजस्टमेंट हो गया। इसीलिए जल देखो हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। जल के आगे बहुत बड़ा पत्थर हो, घूम घाम के जाएगा, रास्ता बना लेगा, रुकेगा नहीं। जब हम कोई विपरीत परिस्थिति, विघन आता है, उसमें रुक जाते हैं, रास्ता नहीं होता, तो क्या होता है, जब पानी रुक जाता है उसमें मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, बदबू आ जाती है। और इसी तरह जब हम रुक जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वभाव में भिन्नता, ऐसे ऐसे चीज आ जाएंगी जो हमारी उन्नति को बाधा पहुंचाती है। इसीलिए जल की तरह सदा आगे बढ़ते रहे। ऐसे धरती में कौन सा विशेष गुण है? पृथ्वी में सहनशीलता, अब वो तो है, साथ में धरती का एक विशेष गुण है दातापन का। धरती हमेशा देती है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजार बीज पैदा हो जाएंगे धरती। ऐसे ही धरती से ही पानी मिलता है, मिनरल, पेट्रोल, सब चीज धरती से मिलती है, अनाज धरती से पैदा, हर चीज। ऐसे ही हम, बाबा चाहता है हम दाता बन जाए, कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए खाली ना जाए, कोई स्थूल चीज नहीं की बात नहीं है, जो भी कोई भी आत्मा आए, प्रेम, सुख, शुभ भावना, शुभ कामना, शांति, उसके प्रति सद्भावना, कोई भी पॉजिटिविटी है, कम से कम वो आत्मा जरूर हमसे लेकर के जाए, तो क्या होगा, हम पृथ्वी की तरह दाता बन गए। और जब पृथ्वी का दातापन का गुण अगर हमने धारण कर लिया, तो पृथ्वी में चाहे जितनी हलचल होगी, अर्थक्वेक होगा, जितने भूचाल आएगा, जितनी धरती हिलेगी, लेकिन ये धरती को चूंकि मित्र बना लिया, तो ये धरती सही समय पर हम मित्र की रक्षा करेगी, हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। लेकिन कंडीशन यह कि धरती की तरह हम दाता बन करके सबको देते चले, जो बाबा से, सदा बाबा से हम बच्चों को मिलता है। इसी तरह वायु का क्या गुण है? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। धरती हर चीज को नीचे खींचती है, वायु ऊपर उठाती है, हल्का। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति है, परिस्थितियां तो आएंगी, पारिवारिक परिस्थिति आएंगी, धंधे की आएंगी, शरीर की आएंगी, निकट संबंधियों की आएंगी, प्रकृति की आएगी, बहुत आएंगी, लेकिन वो हमें भारी ना कर दे। कई बार जब व्यक्ति भारी हो जाता है, उसका दूसरे से बोलने की दिल नहीं करती, बातचीत नहीं करते, और वो भारी हो जाता है। बाबा चाहता है आप वायु की तरह हल्के रहो, और जितना हल्के रहेंगे उतना क्या होगा, हल्के रहते रहेंगे तो कभी भी ये देह अभिमान रूपी धरती, ये जो बाबा कई बार कहता है ना, ये देह, ये मिट्टी है, तो ये कभी भी हमें अपनी तरफ नहीं आकर्षित करेगी, खींचेगी नहीं। और वायु में जितने भी साइक्लोन आएंगे, मैंने देखा बांग्लादेश में हम गए थे, इतना बड़ा साइक्लोन, कहते हैं यहाँ तो ये आते रहते हैं, उड़ीसा, जो भी समुद्र के किनारे के हमारे भारत के भी हुए, वहाँ बहुत बहुत स्पीड से हवाएं चलती हैं, साइक्लोन। अमेरिका में भी अभी इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, वहां पर सुना कि इमरजेंसी वहां पर लागू कर दी है। तो ये प्रकृति के जितने ये खेल हो रहे हैं ना, तो ये प्रकृति के खेल हमें पराजित नहीं कर पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे, अगर हमने हल्का रहना सीखा होगा, वायु की तरह वायु का गुण धारण कर लिया, हल्के रहेंगे, भारी नहीं होंगे, सदा विजय प्राप्त करते रहेंगे। ऐसी आकाश, आकाश का क्या गुण है? आकाश विशालता। बाबा चाहता है हमारा हृदय भी इतना फिराक दिल हो, विशाल हो, किसी की भी कमी कमजोरियां ये हमारे दिल में अपना स्थान न बना सके। और आकाश की क्या विशेषता है? आकाश के कारण ही ना आज ये कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है। आकाश के अंदर ऐसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, वो सैटेलाइट छोड़ते हैं, उसके कारण बस एक सेकंड में दुनिया के किसी कोने का दृश्य देख सकते हैं, अपना दृश्य यहाँ से भेज सकते हैं, बात करना चाहें बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश की तरह विशालता है, उसमें सैटेलाइट छोड़े हैं। ऐसे ही बाबा चाहता है हम सब लोग जगत जीत बनने वाले हैं, मन जीते जगत जीत। तो इसीलिए हमारे अंदर भी इतनी विशालता हो, हमारा किसी से भी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। होता क्या, जिनसे हमारे संबंध मधुर होते हैं उनसे तो हम बात करते रहते हैं, टाइम किधर निकल गया पता भी नहीं चलता, और जिनसे संबंध अच्छे नहीं होते वो सामने भी आ जाएंगे ना, तो भी हम उनसे बात नहीं करना चाहते, नजर बचा के रास्ता बदल करके चले जाते हैं। तो बाबा चाहता है आप जगत जीत हो, जगत की एक एक आत्मा के साथ आपका कनेक्शन रहे होगा, तब जगत जीत बनेंगे। और ये तब होगा जब हर आत्मा के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, आपका वार्तालाप होगा। स्थूल रीति से तो नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठ के उन आत्माओं को सकाश दो, हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना का दान दो, उनसे हमारा कम्युनिकेशन बातचीत एस्टेब्लिश हो जाएगी। जितनी जितनी आत्माओं से होती रहेगी उतना उतना हम जगत जीत और बड़े राजा महाराजा बनते जाएंगे। और अंतिम तत्व है सूर्य, अग्नि तत्व, प्रकृति में अग्नि तत्व सूर्य से प्रदर्शित होता है। तो अग्नि में क्या विशेष गुण होता है, क्या होता है अग्नि में गुण? अग्नि हर चीज का रूप बदल देती है, अग्नि में डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही बाबा चाहता है अब आप सबका भी ना ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप हो, और ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप जितना जितना आपका होता जाएगा तो जो आत्मा आएंगी, बाबा ने कहा अभी इतने दुख अशांति बढ़ने हैं, आपके सामने रोती हुई आत्मा आए, लेकिन आपके सम्मुख आप अग्नि स्वरूप ज्वालामुखी स्वरूप योग युक्त स्थिति में स्थित हैं, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की धारणा करती हुई चली जाए, उसका स्वरूप ही बदल जाए। और वो तब होगा जितना जितना हमने अपने को, और ये सब का आधार ही है टोटल मन। इसीलिए अनाउंसमेंट, तो ये सब का आधार ही है अभी कि किस प्रकार से हम अपने मन को, जितना मन को जगत जीत, मन को जीतते जाएंगे उतना जगत जीत बनते जाएंगे। और बाबा का यही देखा, साकार बाबा का। तो इसीलिए आज हम सब लोग यही संकल्प लेके उठें कि हम सबको बाबा के समान बस मन के ऊपर संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और ये विजय प्राप्त करके हमें भी जगत जीत बनना है। ओम शांति, ओम शांति।